أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس سے، ہمارے گناہوں کے شر سے اور ہر بری چیز سے بچائے. تو آئیے شروع کرتے ہیں شعور کے ساتھ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ڈی کیو 2024، دور قرآن 2024، اور آج ہم اس میں سے کریں گے پارہ نمبر 24. 24، فمن اسلم. ہر پارے کا جو نام ہوتا ہے نا، یہ بہت قابل توجہ ہوتا ہے. 80% بات اس پارے کے نام کے اندر ہی گھوم رہی ہوتی ہے. عام نظروں سے جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت رینڈم ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کدھر کیا کچھ ویسے ویسے، لیکن جب آپ اس کے اندر گہرائی سے نظر لگاتے ہیں نا، تو آپ حیران ہوتے ہیں. پیچھے آپ نے دیکھا، جیسے سورہ ہجر ایک آیت پچھلے پارے میں تھی تو اگلی آیت دوسرے میں تھی. تو یہ جو پاروں کی ترتیب ہے نا، یہ ہمارے انڈیا پاکستان میں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. عرب لوگ اس سے زیادہ کچھ امپریس نہیں ہوتے، کیونکہ جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ اللہ کی طرف سے توقیفی ہے، اور اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ ہمیں اس پارے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پچھلے پارے میں ہم نے سورہ یاسین کا کچھ حصہ، سورہ صافات، سورہ سوات، سورہ زمر کی تھی، 131 آیات. اور ہم نے دیکھا تھا کہ راہ حق کا شہید کتنا بولڈ تھا کہ لوگ اس کو مارنے میں بھی پل پڑے، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہ کی. پھر اسی طرح سے گستاخ رسول کے لیے وعید ہم نے دیکھی تھی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگ ان کا فن کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، کل بھی کریں گے، اور یہ کرتے ہی رہیں گے. حق والوں کی مخالفت تھی، ہے اور ہوتی رہے گی. ہم نے ان سب سے اوپر اٹھ کر اپنے عمل کو بہترین بنانا. پھر ابلیس کے تکبر کو ہم نے دیکھا، اور اس میں بہت ہی لمبی بات تھی، شقاق اور عزہ. مجھے تو بعد میں بھی اثر رہا. سوات کی پہلی شروع کی دعائیں، حقیقت یہ کہ قرآن آپ کی انا کو نچوڑتا ہے، نچوڑتا ہے، نچوڑتا ہے، نچڑتے نچڑتے پھر آپ وہ بن جاتے ہیں جو رات کے سیشنز میں اللہ ہمیں بنانا چاہ رہا ہے. حقیقت ہے، یعنی میں اپنے دل دماغ پہ اتنا گہرا اثر دیکھتی ہوں ہر دن کے سیشن کا کہ یہ بات یہاں کہنے والی ہی نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو اپنے تعلق کو پیش کرنے کی نوبت آتی ہے، تو پھر بندہ دیکھتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں. پھر اس کے بعد ہم نے بالکل پارے کے اینڈ پر سورۃ زمر کی آیتوں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اس کی روشنی میں دیکھا تھا کہ سینہ کس کا کھلتا ہے اور نور ہدایت کس کے لیے اللہ نے کھول کے رکھ دی. آج ہمارے پاس خوبصورت پارہ، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ اور میں بھاگ لیں، دوڑ لیں، روزے رکھ لیں، افطاریاں کرا لیں، سحریاں کر لیں، عمرے پہ عمرے کر لیں، حتیٰ کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. ایک ریگریٹ ہے، ایک فیلنگ ہے، ہر سال کی طرح قرآن پورا ہوتا جا رہا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ سے ایمان، استقامت، عمل کی طلبگار بن کر آخری ہچکی تک اس رب کے راستے میں لگے رہنے کی دعا کرتے ہیں. پچھلے پارے میں اخلاص کے بارے میں پڑھا، اور اخلاص کا نہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت مہنگا گفٹ خریدے لیکن ایڈریس غلط ڈال دیں، تو وہ آپ کے پیارے کو نہیں پہنچے گا، آپ کی پیاری کو نہیں پہنچے گا، وہ وہاں نہیں پہنچے گا جہاں پہنچنا چاہیے تھا. کیا یہ میری آپ کی نمازیں، روزے، تہجدیں، ہمارے حج، ہمارے عمرے کہیں ایسے ہی غلط ایڈریس پہ تو نہیں جا رہے؟ آج اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے رات کی تراویح بھی پڑھیے گا، اور جو بھی نیکی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس بارے میں بھی یا ایھا الذین آمنو سے متعلق کوئی آیت نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کی فطرت پہ لکھی ہوئی پکارے ہیں جو اس قرآن کی آیتوں کی روشنی میں آپ کے کانوں پہ پڑ رہی ہیں. پورے پارے کے اندر جو بنیادی تھیم ہے وہ استقامت ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ادھوری، بالکل پوری، آدھی تھوڑی، آدھی جھوٹی، آدھی روٹھی نیکیاں نیکیاں نہیں ہوتی. ان ساری نیکیوں کو کرتے ہوئے، ان کو اللہ سے ہی توفیق مانگتے ہوئے और तीसरा दिन है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये कॉल बोलते हुए कि अल्लाह तेरा तो शुक्र अदा करना भी एक नेमत है, बता फिर मैं इसका शुक्र कैसे अदा करूं। तो इस सोच के साथ इस्तकामत की दुआ करें। हमने रमजान की इन चंद घड़ियों में जो कर लिया ये काफी नहीं है, ये हमारे लिए बचत का जरिया नहीं बनेगा। अगर हमने इससे आगे बढ़कर मजीद मजीद और मजीद की कोशिश न की, और जितना ज्यादा आप अपनी जिंदगी में इन चीजों को लेते आ रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके अंदर ये फीलिंग बढ़ती ही जाएगी। और मैं तो अपने लिए भी दुआ करती हूँ और आपके लिए भी करूंगी कि कभी आपकी तबीयत सैर ना हो। अल्लाह हमें नेकियों की भूख लगा दे, हमें नेकियों की तड़प लगा दे, हम इन नेकियों को करते करते तेरे पास पहुंच जाए। बस ऐसी नेकियों भी, कल एक किसी ने एक वीडियो भेजी, किसी अरब मुल्क के एक इमाम थे तो नमाज की तरावी में सजदे में गए और फिर उठे ही नहीं, और लोग उनको उठाने की कोशिशों में। कोई ऐसा एक सजदा अल्लाह हमें भी नसीब कर दे, हम भी अल्लाह की रजा के सजदों में, अल्लाह के रजा की भाग दौड़ों में और अल्लाह ताला की तरफ और कुर्ब पाने की कोशिशों में तेरे पास आ जाए। ये एक ऐसी ख्वाहिश और एक ऐसी तलब है कि जब ये बंदे को लग जाती है ना, तो फिर उसके बाद दिल कहीं भी नहीं लगता। तो इस्तकामत फिर दीन। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा था कि मुझे कोई ऐसी बात बताइए कि जिसके बाद मुझे किसी और चीज की जरूरत ना हो। तो आपने फरमाया, अल्लाह को एक कहो और फिर उस पर जम जाओ, सुम मस्तकिन। तो अल्लाह करे कि आपकी मेरी नमाजों पे हमें इस्तकामत हो, हमारे खुशू पे, हमारे खुदू पे, हमारे कुरान की तिलावतों पे, और जो जो भी नेकियां अल्लाह आपसे ले रहा है, अल्लाह ताला उस पे आपको मुझे इस्तकामत अता फरमाए। नसरु मिन अल्लाह की वफतुन करीब किसके नसीब में होगी। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्लाह तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तूअदून। पारे कैंड के करीब ही आयत आने वाली है। तो इस्तकामत में क़यामत है। एक मर्द मोमिन की बात जो इस पूरे पारे में मेन बुनियादी किरदार अदा करता है, और मुझे है हुक्मे अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी अमली तस्वीर सूरत मोमिन जिसके नाम पर भी है, उस बंदे को आज हम ये टाइटल देंगे कि हकीकत उसने हुक्मे अज़ान का हक अदा कर दिया। भरे दरबार में फिरौन के सामने जाकर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना, ये कम ईमान वालों के हौसले की बात ही नहीं है। उन बेचारों को तो समझ ही नहीं आता, वो तो इफ्स एंड बट्स में एंड प्रोज एंड कॉन्स में ही खुद को तोलते रहते हैं, लेकिन उसने जाकर बात की। तो ईमान की ताकत है मर्दे मोमिन की भी, और बाकी पारे में भी हम जो कुछ देखेंगे इंशाल्लाह वो हम इसके साथ लेंगे। सूरत जुमर की आयत 32 से ये पारा शुरू हो रहा है और एंड तक सूरत के हम चलेंगे। आइए देखते हैं कि सूरत जुमर आज मुझे आपको क्या देती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने लिए इस कुरान को सुनते हैं, आप अपनी दिल दिमाग अपने जुबान पे इस कुरान को जारी करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अल्लाह ताला आपको ये कुरान ज्यादा से ज्यादा नसीब करेगा। तो देखते हैं सूरत ज़ुमर। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अफमन असलम मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़ब बिस्सिद्क़ी जाअहू अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन। रुकू नंबर 4 कंटिन्यू हो रहा है 32 से 41। क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? जरा से इस जुमले पे गौर कीजिएगा, दिल के अंदर से जवाब ढूंढ कर कहिए, जी मुझे अल्लाह ही काफी है। और हस्बी अल्लाह वाली दुआएं, हस्बुन अल्लाह वाली दुआएं जितनी याद हैं उन सब को याद करके कहिए, मुझे तो अल्लाह ही काफी है, मेरा अल्लाह मुझे काफी है। और जितना ज्यादा आपका अल्लाह ताला पर यकीन बढ़ता जाता है, सब दूसरे लोग मिट्टी के मोहरों की तरह और मिट्टी के खिलौनों की तरह आपकी जिंदगी की गुड बुक्स में से निकलकर अपने अपने मुकाम पे आते जाएंगे। यहाँ शुरू में एक बात बताऊं, कुरान पढ़ने के बाद अक्सर जो घरों में झगड़े और लड़ाइयाँ या अंदर भी एक जंग क्यों होती है, क्योंकि हमने अल्लाह के बहुत सारे हक लोगों को दिए होते हैं। और इन अल्लाह हश्र वाली आयत को भी याद करके सोच लीजिए, कुछ हक हमने खुद को दिए होते हैं। बेनमाजी हैं तो हमने अपने आप को हक दिया सुस्तियों के मारे, और शिर्क और बिदत में पड़े जितने गुनाह हैं वो आपने अल्लाह के हक मारे हुए हैं। लिख लें, हर गुनाह अल्लाह का हक मारना है, और सबसे बड़ा हक मारना तो क्या है जिसका जिक्र पहली आयत में है, ये जुल्म अजीम है। आइए पढ़ते हैं। اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اور سچا دین جب اس کے سامنے آ جائے تو اسے جھوٹا بتائے؟ کیسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو سچے دین کو لائے یعنی نبی، اور جس نے اس کی تصدیق کی یعنی ابو بکر صدیق، یہی لوگ پارسا ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے اعمال کو دور کر دے، اور جو نیک کام کیے انہوں نے ان کا اس سے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس آیت میں کہیں فٹ کرتے ہیں، یہ ہے وہ آیت جس کی بنیاد پہ قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں۔ یہ وہی آیت ہے جو سورت مائدہ کے اینڈ پہ بھی اور سورت توبہ کے اینڈ پہ بھی آپ پڑھ چکے، کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو۔ حقیقت ہے کہ دنیا میں آج سچ اور جھوٹ کے بڑے غلغلے ہیں، گورے جھوٹ نہیں بولتے، ہم جھوٹ بولتے، وہ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ اس رکوع کے اینڈ پہ انشاءاللہ ہم دیکھنے والے ہیں کہ سب سے بڑا سچ کیا ہے دنیا کا، اور سب سے بڑی جھوٹی بات کیا ہے جس پہ لوگ آج جمے ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں، یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں؟ ہر ایک سوال کے جواب میں کہ جی ہے۔ قرآن کو سننے کا سب سے بہترین انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کو سننے کے دوران آپ کے اپنے اندر سے جواب آ جائے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے، اچھا یہ تو بتلاؤ پھر، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یہ ہے سول سرچنگ کوسچن۔ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ فرما لے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ جواب دیجئے، نہیں روک سکتے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ اللہ مجھے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا رب ہمیں کافی ہو جائے تو ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں، ہر ایک ہمیں مل جائے تو وہ پھر بھی ہمیں ناکافی ہے اگر ہمارا رب ہمارا ساتھ دے۔ ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو محسوس کیا جائے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھایا جائے۔ ایک ایک سوال کے اندر نہ ایک ایک تڑپ ہے، یہ نہیں سمجھ آئی ساری زندگی، اور ہم نے اپنی زندگیاں تقریباً گزار لی ہیں۔ دیکھیے نصف گزر گیا تو گزر گئی، 30, 32, 35 از ہاف آف دی ایج، 63 کا ہاف بتا رہی ہوں۔ ابھی اپنے معصوم بچوں پہ رحم کریں، جو ابھی اپنی زندگی کی بہاریں دیکھ رہے ہیں، سارے سبق چھوڑ کے، ساری کتابیں پڑھا کر، اور ان کو نمازوں پہ ڈانٹ کر، اور ان کو یہ نہ کرو، وہ نہ دیکھو، یہ نہ سنو، چھوڑ کر صرف ایک بات پہ بات کریں، کیا اللہ کو پہچان گئے، اس کی معرفت۔ آج ہم نے معرفت کا اگلا سٹیپ پڑھا، جب معرفت آتی ہے نا تو پھر اللہ اکبر ہو جاتا ہے، گونگ ہو جاتی ہے زبان بات کرتے ہوئے۔ اب یقین کریں کہ یہ پیپر سب سے مشکل ہے آج امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جدھر نبی آئے تھے، اور آج ہم بڑی رونق سے کہتے ہیں مشرقین مکہ، آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری آیتیں کن کو کہی جا رہی ہیں؟ مشرقوں کو۔ اللہ کے بندو، آج ہم ان کو مشرق کہتے ہیں، وہ خود کو مشرق نہیں کہتے تھے، وہ مسلمان کہلاتے تھے، حضرت اسماعیل اور ابراہیم سے نسبت جوڑتے تھے، خانہ کعبہ کے کنسٹوڈین کہلاتے تھے، حضرت ابراہیم کی پشت میں سے، ان کی وجہ سے آج لوگ کہتے ہیں ہم سیدوں کی نسل سے ہیں، ہماری پشت اور ہماری بیک سیدوں سے ملتی ہے، اور ہم ہاشمی اور ہم سید ہیں نا، وہ اس طرح حضرت ابراہیم سے نسبت جوڑتے تھے، لیکن عمل نہیں تھے۔ میں حیران ہوتی ہوں، اللہ اگر آج اس قرآن کے بعد کوئی اور کتاب تو نے بھیجی ہوتی تو ہم تو شکلیں چھپا چھپا کر گزرتے ہیں۔ آج بھی لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ کتاب کی طرح جس پہ تم عمل کر رہے ہو، اگر بانٹنی ہے تو وہ کتاب بانٹو جو کہ تمہارے عمل میں، ہمیں کوئی تم مشکل کتاب دے رہے ہو، اور خود تم نے ساری چیزوں سے چھٹی لی بھی ہے، یہ ہمارے منہ پہ تماچے پڑتے ہیں۔ دوبارہ اس شور سے سنیے، آپ ان سے کہیے، اچھا اگر یہ ہے تو بتاؤ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کہ یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ سے مہربانی کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ आप कह दीजिए कि अल्लाह मुझे काफी है, तवक्कुल करने वाले इसी पर तवक्कुल करते हैं। कह दीजिए कि मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह पर अमल किए रहो, मैं भी अमल कर रहा हूँ। अभी अभी तुम जान लोगे कि किस पर रुसवा करने वाला अजाब आता है और किस पर हमेशगी की मार और दायमी सजा है। आप पर हमने हक के साथ ये किताब लोगों के लिए नाजिल फरमाई है, बस जो शख्स राह रास्त पर आ जाए इसके अपने नफे के लिए है, और जो गुमराह हो जाए इसकी गुमराही का वबाल बस इसी पर है, आप इनके जिम्मेदार नहीं। तो पहला ही लफ्ज़ फमन अज़लम, इसको नोट कीजिएगा। कोई जितना भी सच बोले, जब तक दुनिया की सबसे सच्ची सच्चाई को ना माने, और वो क्या है, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस में आता है कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे के सारे गुनाह एक पलड़े में डालेगा और दूसरे पलड़े में सिर्फ एक पर्ची पे लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह डालेगा, तो पर्ची नेकियों के उस बोझ से दब जाएगी और गुनाह ऊपर चले जाएंगे। पूरे एक पलड़े में कलमा डाल दें, पूरे पे दूसरी तरफ पूरी इंसानियत को तोलें, ला इलाहा इल्लल्लाह वजन इतना होगा। इस पे आप आजादियां लेते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, सऊदी अरब का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, सऊदी फ्लैग का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, सऊदी एयरलाइन के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होता था। हम सब गौर से देखें कि हम किधर हैं। तो अल्लाह को मानना दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज गैर मुस्लिमों की सच्चाइयों पे किसी को कोई शक नहीं होगा, लेकिन जो अपने मालिक को ना पहचाने, जो उसके होने को या उसके हक को ना पहचाने, फिर बताइए कि आप उसको सच्चा बोलेंगे कि झूठा। और हम जो सारे भी होल्डर्स ऑफ द ट्रुथ है, सच्चाइयों को लेकर जेबों में फिर रहे हैं, अगर वो अल्लाह तक बात नहीं पहुंचाएंगे तो हक अदा नहीं होगा। हक तो है कि हक अदा ना हुआ। और आप देखेंगे कि इसके बीच में हमें खौफ होते हैं, किसी की बुक्स में आ जाएंगे, पुलिस की नजरों में आ जाएंगे, तो जुमला लिख लीजिए अलैहि सल्लल्लाहु भी काफ़िन अबदा। इसमें ये भी नहीं कहा कि तवक्कुल करो, कई जगह कुरान में फतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत भी है। यह सवाल है, क्या नहीं अल्लाह काफी अपने बंदे को? इस शब्द में अपने आप को फिट कीजिए और फिर इस बिकाफ के अंदर जो अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। ये मजमून सूरत अलाक में आएगा, बड़ी खूबसूरत आयतें हैं वहां। तो फेथ इन एक्शन क्या है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, हर मुश्किल के हल के लिए सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करना है, और हिदायत की दुआ अपनी भी और दूसरों की करते ही चले जाना है। फिर आखिर को नंबर 5 है, 42 से 52, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। जवाब मिल गया आपको, मौत तो वैसे भी आ जाती है। क्या सारे कलमे हक की गवाहियां देते हुए मरते हैं? क्या सारे मैदान जंग में जाके ही मरते हैं? नहीं, अल्लाहु यतवफ्फल अन्फुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। 42 से 52 रुकू नंबर 5 है। आपकी मेरी नींद एक छोटी मौत है, हर रोज मौत के मुंह से निकलकर सुबह उठकर आ नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा मातना वइलैहिन नुशूर। रात को बिस्तर पे सोते हुए क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुत वाहया, तो फिर बिस्तरों पे जाना छोड़ दें। क्यों डरते मैदान जंग में जाते हुए कि वहां जाके मर जाएंगे? तो आपके मेरे माँ बाप दादा नाना चाचा फूफो मामू कितने बिस्तरों पे मरे, तो क्या बिस्तरों पे जाना छोड़ दिया? कश्ती चलाने वालों के आबाओजाद में कितने कश्तियों में डूब गए, तो क्या उन्होंने कश्ती चलानी छोड़ दी? अब इन सारी चीजों को सोचते हुए सुनिएगा, अल्लाह ही रूहों को इनकी मौत के वक्त, तो जिनकी मौत नहीं आई, इन्हें इनकी नींद के वक्त कब्ज कर लेता है, फिर जिन पर मौत का हुक्म आ चुका है इन्हें तो रोक लेता है, और दूसरी रूहों को एक मुकर्रर वक्त तक के लिए छोड़ देता है। गौर करने वालों के लिए इसमें यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा औरों को सिफारशी मुकर्रर कर रखा है? आप कह दीजिए कि गो वो कुछ भी इख्तियार न रखते हों और न वो अकल रखते हों। कह दीजिए कि तमाम सिफारिश का मुख्तार अल्लाह ही है, तमाम आसमान और जमीन का राज उसी के लिए है, तुम सब इसी की तरफ फेरे जाओगे। जब अल्लाह अकेले का जिक्र किया जाए तो इन लोगों के दिल नफरत करने लगते हैं जो आखरत का यकीन नहीं रखते, और जब इसके सिवा औरों का जिक्र किया जाए तो इनके दिल खिल कर खुश हो जाते हैं। कभी उन लोगों के सामने बात तो करके, वो कहते हैं ये सिर्फ अल्लाह की बात ही करते हैं, ये बुजुर्गों को नहीं मानते, ये पीरों को नहीं मानते, ये मुरीदों को नहीं मानते। भाई किसने कहा आपको नहीं मानते? सबको मानते हैं, लेकिन उन सबको पीर को पीर मानते हैं, बुजुर्ग को बुजुर्ग मानते हैं, बड़े को बड़ा मानते हैं, लेकिन सबको खुदा या खुदाई का शरीक नहीं मानते। आज भी आप देखिए जो लोग ऐसे कामों में मुलव्वस होते हैं उनकी एक किरदार की कह लिए बेहतरीन अल्लाह ताला ने तस्वीर कशीदर कर दी। आप कह दीजिए कि अल्लाह आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, छुपे खुले को जानने वाले, तू ही अपने बंदों में इन उमूर का फैसला फरमाएगा जिनमें ये उलझ रहे हैं या जिनमें वो उलझ रहे थे। अगर जुल्म करने वालों के पास जो कुछ भी हो रुए जमीन पर और इसके साथ इतना ही और भी, तो भी बदतरीन सजा के बदले में क्यामत के दिन ये सब कुछ दे दें और इनके सामने अल्लाह ताला की तरफ से वो जाहिर होगा जिसका गुमान भी इन्हें ना था। जो कुछ उन्होंने किया था इसकी बुराइयां इन पर खुल पड़ी और जिसका वो मजाक करते थे वो इन्हें आ घेरेगा। हकीकत क्या है कि इंसान को जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारने लगता है। याद करिए कोई दुख वाली रात याद आई, किसको पुकारा था उस वक्त? कोई हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए का वक्त याद कीजिए, किसी प्यारे ने फोन नहीं उठाया 5-6 घंटे तो क्या हुआ था? बस ये वो वक्त है जिसकी बातें हैं। फिर जब हम इसे अपनी तरफ से कोई नेमत अता फरमा दें तो कहने लगता है इसे तो मैं महज अपने इल्म की वजह से दिया गया हूँ। शुक्र है फोन है, शुक्र है मैंने अपने मियाँ सब कुछ चेज आउट कर लिया है, ये स्टाइल है, बल्कि ये आजमाइश है। लेकिन इनमें से अक्सर लोग बेइल्म हैं, अल्लाह से नहीं जुड़ते, बस बीच में मखलूक में अटके रहते हैं। नहीं, वो फुलाह ने फिर फोन करके मेरी मदद कर दी थी। इनसे अगले भी यही बात कह चुके हैं, बस इनकी कार्रवाई इनके कुछ काम ना आई, फिर इनकी की हुई तमाम बुराइयां इन पर आ पड़ी और इनमें से जो भी गुनाहगार हैं इनकी की हुई बुराइयां भी अब इन पर आ पड़ेंगी। ये हमें हरा देने वाले नहीं हैं। क्या इन्हें ये मालूम नहीं कि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और तंग भी? ईमान लाने वालों के लिए इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं। क्या पता चला? ईमान से मुतल्लिक दो आयतें 45 सुमर, अल्लाह बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक होता है। आज पूरे पारे के दौरान आपने एक जुमला अपने आप को याद दिलाना है, क्या लैसल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या मेरा अल्लाह मुझे काफी नहीं है? और जितना ज्यादा आप इस जुमले के ऊपर यकीन रखेंगी आप देखिएगा कि आपके अंदर से जवाब आएगा कि अल्लाह मुझे काफी है। और साथ ही साथ हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, आयत 52 जुमर, अल्लाह के फैसले मबनी बर हक हैं, किसी को ज्यादा दे किसी को कम दे वो किसी पे ज्यादती नहीं करता। फिर आयत 42 में अल्लाह यतवफ्फलन फुसाही न मौती हा को आप जहन में रखते हुए सोने से पहले अपना मामला साफ कर लिया करें, शायद के फिर सूर की आवाज पर आंख खुले। हमारे तो अलार्म भी कभी हमें नहीं उठाते, कुछ लोग सोते हैं और फिर सोते ही रह जाते हैं। ऐसा ना हो कि सोए अपने बेडरूम में और आंख खुली कब्र में, तो क्या करेंगे? दिल साफ करके सोएं, मामलात का हिसाब सीधा करके सोएं, लिखत पढ़त करके सोएं। इब्ने मसूद कहा करते थे कि अगर किसी को वसीयत करनी है तो उसकी जिंदगी में कोई एक रात ऐसी ना हो कि वो बगैर वसीयत करे सो जाए, क्योंकि नहीं पता कि मौत कब आ जाए। और इससे एक और बात भी पता चलती है कि सोना और जागना मरने के बाद जीने की दलील है। और आप और मैं रोज रात को एटलीस्ट 1 टाइम तो जरूर सोचें, अपने कमरे की तरफ नजर डालें, अपने हाल हुलिये को देखें, अपनी चीजों को देखें और सोचें कि अगर मैं मौत में ही चली गई तो क्या दूसरे लोग मेरे बारे में अच्छी राय कायम करेंगे मेरे बाद? फिर इसकी जो बहुत ही अहम आयत थी ना वो 47, फबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून। सुफियान सॉरी कहा करते थे, वईल है अहले रिया के लिए, वईल है कि जो दुनिया में नेकियां भी करते हैं और कल बदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून, और खुलेगा उनके लिए अल्लाह के पास वो कुछ जिसका वो गुमान भी नहीं रखते। और दुआ में से एक दुआ शामिल कीजिए, ए अल्लाह हमारे साथ कोई अचानक मामला ना करना, लोग हमें नेकों की लिस्टों में छोड़ वो तो साबिकून अलवलून में ढूंढ रहे हों और हम कई असहाबु शिमाल में खड़े हों, हम के मुकाम आराफ पे ना खड़े हों। क्योंकि जब लोग आपको नेक समझने लगते हैं ना कि आप दौरे कुरान कर रही हैं आप तो बड़ी नेक होंगी, तो लोग आपके बारे में भी यही कहेंगे, लोग आपसे भी सवाल पूछने शुरू हो जाएंगे और कई लोग तो जन्नतियों के फतवे भी बांटने लग जाते हैं ऐसे लोगों को। तो अल्लाह से दुआ करें कि हमारे अमाल नामे कल अहले रिया वाले ना हो, दिखावे वाले ना हो, गलत एड्रेस पे हमारी नेकियां ना हो, ऐसे लोगों के अमाल नामे खाली निकलेंगे। रियाकारी और दिखावे को अगर अपनी जिंदगी में आपने अहम समझना है तो किसी दिन ये तजुर्बा कर लीजिए, अपने घर के लॉकर में खूब चीजें रखें और फिर किसी को भी पहले से कह दें कि उसको निकाल देना, मियाँ को कह दें, दे दें उनको चाबी उसकी। और फिर किसी दिन शादी पे जाते हुए अचानक उसको खोलें और आप भूल चुकी हुई कि मैंने तो शौहर को कहा था आप निकाल लेना, और एकदम जो कैफियत होगी ना कि लॉकर खोला और सारा जेवर गायब, तो ये कयामत के दिन अगर हमारी नमाजों, हमारे रोजों, हमारी तहज्जुदों के साथ हो गया तो क्या करेंगे? कुछ लोग तो निकियां करके भी डरते थे। एक बुजुर्ग रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे, सारी रात रोते रहे। लोगों ने पूछा क्या हुआ? वो कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि कल मेरे साथ कोई ऐसा मामला हो जाए जिसका मुझे गुमान भी ना हो। देखिए पेपर देते हैं तो आपको पता होता कैसा होगा, कुछ ऊपर नीचे हो के आपके मार्क्स आ जाएंगे। आप सोच रहे थे कि आपके पूरे 100 आएंगे मार्क्स, हो सकता है कि 98 आ जाए, कोई गलती ऐसी सिली मिस्टेक हो गई, 90 भी आ सकते हैं। कई दफा आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, सोच कुछ और होते हैं, लिख कुछ और होते हैं, लेकिन ये मुमकिन है कि जब का रिजल्ट आए तो 100 की बजाय 30 भी ना हो। दुनिया में तो हमें मुश्किल लगता है, क्यामत के दिन होगा। रियाकारी, दिखावा, किसी और मकसद के लिए, शोहरत, इज्जत, फ्लेक्स, लोगों की गुड बुक्स में और ये और वो इधर उधर, इन सब को निकाल कर फेंकेंगे तो सिर्फ एक जुमला याद रखे, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। फेथ इन एक्शन, दिल का सुकून पाने के लिए अल्लाह की मुकम्मल इताअत करनी है। दुनिया में किसी को ज्यादा और किसी को कम मिलना इंसान की आजमाइश है और अल्लाह का फैसला है। कोई नेमत मिले तो इसे अपनी काबिलियत नहीं समझना बल्कि अल्लाह की तरफ से आया हुआ एक इम्तिहान समझना। आगे रुकू नंबर 6 है, 53 से 63। मोमिन मायूस नहीं होता। आप सूरत अपने एंड की तरफ आ रही है और इसकी वो खूबसूरत आयतें जो आप में से हर एक की फेवरेट आयतें होंगी, इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे सूरत के एंड तक ये मिलेंगी। कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरी जानिब से कह दीजिए कि मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना। बिल यकीन अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श देता है, वाकई वो बख्शने वाला बड़ी रहमत वाला है। तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ झुक जाओ। यहाँ स्टेप्स हैं, अनीबू इला रब्बिकुम, पिछले पारे की नौबत याद करें, हजरत दाऊद, हजरत अय्यूब और हजरत सुलेमान की नौबत याद करें, पिछली पारों की सूरत स्वाद में आपने पढ़ा, और इसकी हुक्म बरदारी करते जाओ इससे कबल के तुम्हारे पास अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद ना की जाए। एक वार्निंग है, एक अलार्म है। अगला स्टेप देखिए, वत्तबी और पैरवी करो इस बेहतरीन चीज की जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल की गई है, इससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें इत्तला भी ना हो। ऐसा ना हो कि कोई शख्स कहे हाय अफसोस इस बात पर कि मैंने अल्लाह ताला के हक में कोताही की, बल्कि मैं तो मजाक उड़ाने वालों में ही रहा। ये है हक, तो ये है कि हक अदा ना हुआ। या कहे कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत करता तो मैं भी पारसा लोगों में होता। या साहब को देखकर कहे काश किसी तरह मेरा लौट जाना होता तो मैं भी नेकुकारों में हो जाता। हाँ हाँ बेशक तेरे पास मेरी आयतें आ पहुंची थी जिन्हें तूने झुटलाया और गुरूर और तकबर किया, और तू था ही काफिरों में से। और जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बांधा तो आप देखेंगे कि क्यामत के दिन इनके चेहरे स्याह होंगे। क्या तकबर करने वालों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं है? और जिन लोगों ने परहेजगारी की ना अल्लाह ताला इनकी कामयाबी के साथ बचा लेगा, इन्हें कोई दुख छू भी ना सकेगा और न वो किसी तरह गमगीन होंगे। अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज पर निगेबान है। आसमान और जमीन की कुंजियों का मालिक वही है। जिन जिन लोगों ने अल्लाह तआला की आयतों का इनकार किया वही खसारा पाने वाले हैं। चलिए इस रुकू को देखिए, आयत 53 में किसने किसको पुकारा। हम अमूमन क्या कहते हैं, आप तो बड़े नेक लोग हैं, अल्लाह आपकी बात सुनता है। कितने बुजुर्गों को आपने ये बात कही होगी, लोग कब्रों में सोए हुए बुजुर्गों को सोने नहीं देते अगर वो अल्लाह की रहमत से सुकून की नींद सो रहे, जा जाकर उनके दरवाजे खटखटाते हैं और क्या कहते हैं के जी हमारी सुन ले, हाय बच्चा चाहिए, हाय फलां चाहिए। अल्लाह नेकों को नहीं यहाँ किनको पुकारा है, गुनाहगार बंदों को। अल्लाह अपने नेक नहीं गुनाहगार बंदों को पुकार रहा है, ऐसे बंदे जो गुनाह करके डरते हैं, अकड़ते नहीं। यहाँ आप देखिए अल्लाह जीना अशरफ हुआ है बस। अब इसमें भी बलागा का एक खूबसूरत असूल मुझे दिख रहा है, बता नहीं सकती ना। यहाँ आबदा है ना, मनु आए हैं ना नास आया, बस असरफ हुआ है, गुनाहों की शर्मिंदगी में चूर। कर तो गए ना उसके हाथों, अब शर्मसार है, इसराफ हो गया उनसे। एक दो गुना हो तो याद रखे, हमें तो याद भी नहीं कितने गुना किए। तो ये गुना करके डरने वाले हैं, अकड़ने वाले नहीं है। हम अमूमन सोचते लग कैसे माफ करेगा, मेरा तो दिल नहीं करता इनको माफ करने को। तो लिखिए, अल्लाह को बंदों पर कयास ना करें कि वो नहीं मानेगा, वो तो इतनी जल्दी मान जाता है कि रिवायात में आता है कि जब फिरौन डूब रहा था ना, तो उसके मुंह पे ये लफ्ज थे ना, आमन तो बिल्ला, तो जिब्राइल ने उसके मुंह में जाके मट्टी भर दी कि कहीं वो और कुछ ना माफी मांग ले कि अल्लाह उसको माफ कर दे। आपका रब तो वो है, वो मान लेता है, हम नहीं आते। हजरत मूसा का दौर है और बारिश नहीं है। सारी बस्ती के लोग मिलकर गए खुली जगह में, दुआ करेंगे बारिश होगी। अल्लाह ने वही के जरिए मूसा को बता दिया कि इस महफिल में एक ऐसा बंदा है जो बहुत ही बड़ा गुनाहगार है, उसकी मौजूदगी में दुआ कबूल नहीं होगी। मूसा ने भी नाम लिए बगैर बता दिया कि भाई ये मामला है। उस बंदे को बड़ी शर्म आई, क्योंकि अशरफ होता, अशरफ वाला शर्मिंदा होता है, अकड़ू नहीं है, ये लॉजिक्स नहीं दे रहा, दलीलें नहीं देता, माहौल है, मजबूरी है, आपको क्या पता, और आपको क्या पता, जस्टिफिकेशन नहीं होती उसके अंदर, बस वो कर लेता है गुना, हो गया, बस किसी बुरी सोहबत में आके हुआ, किसी की मजबूरी पे हुआ, किसी की खुशी पे हुआ। लेकिन अब वो परेशान है कि मैं अपने आप को कैसे साफ करूं, कपड़े गंदे तो हो गए, आप इनको साफ कैसे करना है। तो खैर, उस शख्स ने वहीं बैठे बैठे अल्लाह से कोई बातचीत की और बारिश शुरू हो गई। मूसा ने कहा, अल्लाह तआला भी तो आपने कुछ और कहा, अब हो कुछ और गया। कहा मूसा, उस बंदे ने तौबा कर ली, जब तौबा कर ली तो मैंने माफ किया, माफी हो गई तो उधर चला गया, जब रीजन जो चली गई तो बीमारी भी इंशाल्लाह चली जाएगी जिस्म की, अल्लाह ने चाहा तो। कहा अच्छा, अल्लाह उसका नाम तो बता दे। कहा अब नाम कैसे बताओ, पहले तो वो गुनाहगार था तो तेरे सामने उसका नाम नहीं खोला, अब तो वो मेरा हो गया, अब क्यों बताऊं कि उसके पिछले गुनाह ये थे वो थे। दिस इज अल्लाह। तो अल्लाह की पकड़ के आने से पहले अल्लाह की तरफ रजू करके उसकी फरमाबरदारी करनी है, तौबा में देर नहीं करनी, और इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है, इस यकीन से कि अल्लाह ताला माफ़ करता है। कोई अपना गुनाह याद कीजिए, गुनाह का याद रह जाना भी इस बात की दलील होती है कि अभी इसके अंदर हमें माफ़ी की ज़रूरत है। अपना गुनाह याद करिए आप। अल्लाह हमारे सारी बातनी ढके छुपे सारे गुनाहों को माफ़ करते हैं। अल्लाह ताला आपके अगले पिछले छोटे बड़े इकराह के, मजबूरियों के गुनाहों को भी माफ़ कर दें। और अल्लाह अगर अगली ज़िंदगी में हमसे कोई गुनाह होना है उसको भी माफ़ कर दे, और अल्लाह हमें अपने गुनाहों पे शर्मसारगी दे दे। आगे जिरको नंबर 7, 64 से 70, अल्लाह की बड़ाई। अल्लाह अकबर। कुल अफ़गैर अल्लाह तामुरूनी आबुद अय्युहल जाहिलून। आप कह दीजिए कि जाहिलो, क्या तुम मुझसे अल्लाह के सिवा औरों की इबादत को कहते हो? यकीनन तेरी तरफ भी और तुझसे पहले के तमाम अंबिया की तरफ भी वही की गई कि अगर तूने शिर्क किया, बिलाशुबा तेरा अमल जाया हो जाएगा, और यकीनन तू नुकसान पाने वालों में से हो जाएगा, बल्कि अल्लाह ही की इबादत कर और शुक्र करने वालों में से हो जा। और इन लोगों ने जैसी कदर अल्लाह की करनी चाहिए थी नहीं की। कितनी दफा आया ये जुमला पहले? फोर्थ टाइम है ये कुरान में। वमा कदरुल्लाह हक कदरी। सारी जमीन क़यामत के दिन इसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान इसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। वो पाक और बरतर है हर उस चीज से जिसे लोग इसका शरीक बनाएं, और सूर फूक दिया जाएगा, पस आसमान और जमीन वाले सारे ही बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर जिसे अल्लाह चाहे, फिर दोबारा सूर फूका जाएगा, बस वो एकदम खड़े होकर देखने लगेंगे, और जमीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा उठेगी। इसको हाईलाइट कर ले। नामे अमल हाजिर किए जाएंगे, नबी और गवाहों को लाया जाएगा, और लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले कर दिए जाएंगे, और इन पर जरा भी जुल्म ना होगा। और जिस शख्स ने जो कुछ किया है, सोचिए जरा अपने करतूत, अपने कारनामे, अपनी एक्टिविटीज, अपनी मसरूफियात, अपनी कारस्तानियाँ, अपनी थिंग्स टू डू, सारा दिन जो करते हैं उसको जहन में लाइए। और जिस शख्स ने जो कुछ किया है भरपूर दिया जाएगा, जो कुछ लोग कर रहे हैं वो बखूबी जानने वाला है। रुकू का आगाज हुआ अय्युहल जाहिलून से, बस हमें तो सबूत मिल गया ना, ओ जाहिलो। और कुछ बुजुर्गों ने तो अल्लाह रहम करे इसी पे अमल करना है। वो मुबल्लिगीन को कटहरे में खड़े हुए एक मुलजिम नहीं, मुजरिम साबित करते हैं, तो फिर जाहिलो, ओ फलानो कहते हैं। तो आप कहते हैं कुरान में तो है बाकी, तो लिखिए, ये मुहाजिराना अंदाज है, तबलीगाना नहीं। तबलीग कर करके समझा समझा के, अनजरतहुम लम तुनज़िरहुम ला यूमिनून की कैफियत आ जाए और मुतारिका शुरू हो जाए, जिसको अल्लाह ने इबाद रहमान की भी सिफत बताई थी, कालू सलामा, हम जा रहे हैं, हम नहीं जहलों से उलझते। इट्स बेटर टू लूज एन आर्ग्यूमेंट देन लूजिंग अ पर्सन, वाली जब कैफियत आ जाए फिर ये अंदाज इख्तियार होता है। ये बिल्कुल वही है जो मक्का के आखिरी दिनों में कह दिया, क्योंकि लकुम दीन नकुम वलियत दीन। अल्लाह ने तो पूरी जिंदगी में अबू जहल के लिए और अब्दुल्ला बिन उबई के लिए जुमले ना बोले, हाँ इल्ला ये कि जहाँ अल्लाह ने अपने नबी की जुबान से वो बात निकलवानी चाहिए, तो आपका मेरा काम क्या कि अपना अखलाक अच्छा रखें। फिर इस रुकू में हमने देखा कि जमीन अल्लाह के नूर के साथ चमकेगी। हकीकत है कि इस दुनिया में जो सूरज की रोशनी है ना, अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द, उसको सामने रखिए, इसका मेन सोर्स पीछे अल्लाह की जात है। चांद की रोशनी का सोर्स अल्लाह की जात है। ये दिलों का जो नूर है, ये जो कुरान का जो नूर है ना, ये इसका मेन स्टेशन, जिसको हमारे यहाँ अगर आप इलेक्ट्रिक सिस्टम से समझें कि एक बिजली घर होता है, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है, उधर से बिजली फिर गली में जाती, गली से फिर वो ट्रांसमीटर पे जाती, वहां से गली में घर घर आती, फिर आपके मेन स्विच में आती, वहां से पूरे घर के सारे आपके जो सॉकेट उसमें आती है। ये सब कुछ दुनिया में असबाब के साथ हो रहा है। पीछे मेन हब क्या था? अल्लाह नूर समावत। क्यामत के दिन ये सारी बीच की मशीनरी निकल जाएगी। वशरकत अल-अर्ध बिनूरी रब्बिहा, वो क्या मंजर होगा! कभी सस्पेंस नहीं आता कि जाकर देखें जल्दी से? ये बेचैनियां थी सहाबा को जो शहादत के लिए निकलते थे कि अल्लाह हम देखना चाहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। हमारा तो अभी तक जीने का सिलसिला नहीं पूरा हुआ, तो मरने का सिलसिला कहाँ सोचेंगे? तो फेथ इन एक्शन क्या है कि शिर्क करते हुए नेक अमाल का कोई अजर नहीं मिलेगा, इसलिए नेक अमाल नहीं छोड़ने, शिर्क छोड़ना है और अपने नामे अमाल की फिक्र करनी है। देखो नंबर 8:71-75, अब बिल्कुल सूरत का एंड है। आप तसव्वुर में खुद को रखिएगा कि मैं दोनों गिरोहों में से किस गिरोह में होंगी। क़यामत के दिन मुख्तलिफ गिरोहों की कैफियात। वसीकल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा, काफिरों के गौल जहन्नम की तरफ हकाए जाएंगे। जब वो इसके पास पहुंच जाएंगे तो इसके दरवाजे इनके लिए खोल दिए जाएंगे और वहां के निगेबान इनसे सवाल करेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम में से कोई रसूल नहीं आए थे? बात वालों को क्या पूछा जाएगा? क्या तुम्हारे पास रसूल के भेजे हुए नहीं आए थे? रसूल की दीवी किताब सुन्नत हदीस नहीं आई थी, जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें जिन की मुलाकात से डराते थे? ये जवाब देंगे कि हाँ दुरुस्त है, लेकिन अजाब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया। कहा जाएगा कि अब जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, जहाँ हमेशा रहोगे, पर सरकशों का ठिकाना बहुत ही बुरा है। और इसके बरक्स एक दूसरी ट्रेन भी रेडी है, उसमें जो लोग बैठेंगे वो कौन है? और जो लोग अपने रब से डरते थे, पहली चीज अल्लाह का डर। आगे भी पढ़ेंगे, सूरह मारिज में भी आएगा, नामे अमाल दाएं हाथ में मिलने वाले शख्स को लोग पूछेंगे कि तुम्हें कहाँ से मिल गया? वाम्मा मनूत या किताब बहुबी यमीन ही, उससे जब पूछा जाएगा कि तुम्हारी नेकी क्या थी, तो एक जुमला, इन्नी जनन तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मैंने जिंदगी इस गुमान के साथ गुजारी कि मैं अपने हिसाब से मुलाकात करूंगा। तो ये डर बड़ी नेमत है जो आपको हो रहा है। अगर इस वक्त हक तो ये है कि हक भी अदा ना हुआ, लेकिन चलिए किसी हद तक डर रहे हैं, तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और मुझे इस गिरोह में शामिल कर ले। और जो लोग अपने रब से डरते थे, इनके गिरोह के गिरोह जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे। यहाँ तक कि जब इसके पास आ जाएंगे और दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वहां के निगेबान इनसे कहेंगे, तुम पर सलाम हो, तुम पाकीजा हो, इसमें हमेशा के लिए चले जाओ। ये कौन सी पाकीजगी है? पहला कलमा तैयब तैयब, मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर सोच की पाकीजगी, जुबान की पाकीजगी, आंख की पाकीजगी, ना गंदी चीज देखी ना सुनी ना बोली। अल्लाह हमें ऐसे ही लोगों में डाल दे। ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक और पॉइंट नोट कर लें, वो कहेंगे अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया और हमें इस जमीन का वारिस बना दिया कि जन्नत में जहाँ चाहें मुकाम करें। बस अमल करने वालों का क्या ही अच्छा बदला है। आपने देखा, ये जुमला दोहरा लीजिए, दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदकना वादहू वअवरसनल अर्दा तबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशा। فني مارجر العاملین. خالد تختانی صاحب ہے، نام لکھ لیں، یوٹیوب پر ڈال کے مل جائے گی آپ کو، ان آیتوں کے نمبر کے ساتھ ان کا نام ڈالیں، خالد کہتانی، بہت خوبصورت پڑھا ہوا ہے انہوں نے، ہچکیوں کے ساتھ ان آیتوں کو انہوں نے پڑھا. اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. تو جنتیوں کا گروپ، ایسے نہیں لگ رہا کہ کوئی ٹرپ جا رہا ہے اور بسوں میں بیٹھ رہے ہیں، ایک وی آئی پیز کی بس ہے، ایک اس کی بس ہے، ایک اس کی بس ہے، اور اللہ کے نبی نے تو پہلے سے بتا دیا. دیکھیے سب کون لوگ ایک جگہ مل کے جاتے ہیں، جو آپس میں لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں، دل خوش. کسی ایسے کے ساتھ آپ ٹرپ میں جانا چاہیں گے جس کو دیکھتے غصہ آ جاتا، جس کو دیکھ کے زبان پریشان ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی کی روایات کو جمع کریں نا، تو سارے جنتی ایک دل والے کی طرح دھڑک رہے ہوں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ نہ ہوگا. دنیا میں کینے کو اتار کے پھینکی اپنے دل کی دیوار سے، آپ کی دنیا جنت ہو جائے گی. حدیث سنا دیتی ہوں، میرا دل تھا کہ میں آپ کو پوری روایت سناؤں، بخاری کی روایت 3254. سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا، ان کے چہرے آسمان پر موتی کی طرح چمکنے والے ستاروں میں، جو سب سے زیادہ روشن ستارہ ہوتا ہے، اس جیسے روشن ہوں گے. سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، نہ ان میں بغض اور فساد ہوگا اور نہ حسد. ہر جنتی کی دو حور العین بیویاں ہوں گی، اتنی حسین کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی اور گوشت کے اندر کا گودا بھی دیکھا جا سکے گا. آپ نہ پریشان ہو، آپ کے لیے بہت سی نعمتیں. وقال الحمد للہ، یہ کون کہیں گے؟ یہ لفظ قالو دونوں گروہوں کے بعد آ رہا ہے. علماء کہتے ہیں جہنم والے اللہ کے عدل کی تعریف کرتے ہوئے الحمد للہ کہیں گے، اور جنت والے اللہ کے فضل کی تعریف کرتے ہوئے الحمد للہ کہیں گے. دنیا میں کہہ لیتے تو بچ جاتے برے انجام سے. تو فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ کہ زندگی گزارنے کا ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ کل ہمارا انجام کامیاب گروہ میں ہو، ہم ان میں داخل ہوں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے. تو آپ دیکھیے کہ سورت زمر کا آغاز کیا تھا، دین کو خالص کر لو اللہ کے لیے، اخلاص پچھلے بارے میں تھی. اختتام کیا ہے؟ دین کو خالص کرنے والوں کا بہترین انجام. اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال بھی کر دے، اور پھر سیغ الذین اتقوا والے گروہ میں شامل بھی فرما دے. دعا کریں اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ ہمارے بچے بھی اسی بس میں بیٹھے ہوں جس میں ہم ہیں، ہمارے بھائی بہن بھی. ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایک پیچھے رہ جائے نا تو دھیان اس کی طرف رہتا ہے، خوشیوں میں، شادیوں میں، دعوتوں میں، پارٹیوں میں. بیماروں کو بھی کہتے ہیں نہیں نہیں آ جاؤ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، آ جاؤ شاباش، وہاں بیٹھ جانا، وہاں لیٹ جانا. میرا دل نہیں لگتا آپ سب کے بغیر، ایک بھی کرسی خالی ہوتی ہے تو میرا دماغ الجھتا رہتا ہے کہ وہ خیر سے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ان کو کیا ہوا آج. اسی طرح ہمیں ایک دوسرے سے دین کے لیے محبت ہونی چاہیے. اپنے ساتھیوں کا حال پوچھا کریں، کدھر ہے، کون کہاں ہے،